प्रिय श्रोताओं नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी हमारे साथ आज का बाइबल अध्ययन करने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से यशाया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और इसका मुख्य विषय है मसीह का आगमन और छुटकारा। प्रिय श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। लीजिए, प्रस्तुत है ये बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सब इन दिनों बाइबल में से यशाया नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर हमारे अंदर में मनुष्यों में उन 7 बातों को देखना चाहता है ताकि हम आत्मा की समझ में, बुद्धि, विवेक में होकर के, सामर्थ्य में होकर के उसके करीब रह सकें। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि प्रभु हम फिर से आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जो कुछ भी आज हम सीखें, सुनें, निश्चित रूप से हम सबके लिए आशीष का कारण बन जाए। हमारी प्रार्थना हमारे श्रोता भाई बहनों के लिए है जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित हैं या किसी प्रकार के आर्थिक और मानसिक दबाव में हैं, अपने जीवन साथी की तलाश में हैं, नौकरी की तलाश में हैं। प्रभु आप उन सब की सहायता करें, उन्हें अपनी शांति प्रदान करें, इस समय अपनी आशीष दें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि यह आने वाला शांति का राजा कौन होगा और उसके राज्य का उद्देश्य होगा धर्म और सच्चाई। वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। अब हम देखेंगे कि उसके राज्य की विशेषताएं क्या होंगी। तो आइए आप मेरे साथ यशाया 11 अध्याय उसके 6 और 7 पद को पढ़ें। यशाया 11 उसके 6 और 7 पद में लिखा है, तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगे और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। मेरे मित्रों, प्रभु के राज्य में बछड़ा और जवान सिंह एक साथ बैठेंगे। आज तो शेर बैठता है और बछड़ा उसके पेट में रहता है। शेर बैल के समान भूसा खाया करेगा। आज यह बात ग्रहण योग्य प्रतीत नहीं होती है, हम असंभव सोचते हैं। एक बार एक प्रवीण बाइबल शिक्षक ने कहा, मैं आपको बताता हूं कि मैं क्या करूंगा, यदि आप शेर बना दे तो मैं उसे घास भूसा खिला दूंगा। जिसने शेर की सृष्टि की, वह समय आने पर उसे वह भूसा भी खिला देगा। यशाया 11 अध्याय के 9 पद में लिखा है, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। जी हाँ, यह राज्य संपूर्ण पृथ्वी पर होगा। तो राज्य की योजना हम देखते हैं यशाया 11 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, उस समय ईशय की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी, सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा। इस पद की आधार उक्ति है उस समय का आरंभ महाक्लेश के आरंभ से होगा और प्रभु के राज्य तक जाएगा। अन्य जातियों की भागीदारी इस प्रभु राज में होगी। यशाया 11 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं अश्शूर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, एलाम से, शिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर इसराइल को अपने स्वदेश में पुनः स्थापित करेगा। पहली बार वे वहां तब आए थे जब मूसा उन्हें मिस्र देश से निकाल कर लाया था, परंतु प्रतिज्ञा के उस देश में उनका पदार्पण करवाने वाला यहोशू था। यशाया 11 अध्याय उसके 12 पद में हम पढ़ते हैं, वह जाति जाति के लिए झंडा खड़ा करके इसराइल के सब निकाले हुओं को और यहूदा के सब बिखरे हुओं को पृथ्वी की चारों दिशाओं से इकट्ठा करेगा। झंडा, यहाँ झंडा से उसके कहने का तात्पर्य क्या है? यह झंडा कपड़े का नहीं, स्वयं प्रभु यीशु होगा। उस युग में पृथ्वी पर नम्र मनुष्य के लिए साहस बंधाने का केंद्र प्रभु यीशु ही होगा। वह युग नम्र मनुष्यों द्वारा पृथ्वी पर अधिकार करने का दिन होगा। यह परमेश्वर की योजना है और वह उसे पूरा करके रहेगा। यशाया 11 अध्याय के 16 पद में लिखा है, उसकी प्रजा के बचे हुओं के लिए अश्शूर से एक ऐसा राजमार्ग होगा जैसा मिस्र देश से चले आने के समय इसराइल के लिए हुआ था। मेरे मित्रों, उस समय फलिस्तीन से होता हुआ एक मुख्य मार्ग होगा जो अश्शूरों के देश से मिस्र तक होगा। इसका स्पष्ट उद्देश्य होगा कि सब जातियां इस मार्ग से होकर यरूशलेम आराधना के लिए आएंगी, जैसा जकरिया के पुस्तक 14 अध्याय उसके 16 से 18 पद में लिखा है। मित्रों, यहां पर अध्याय 11 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 12 में आते हैं, जिसका विषय है सहस्त्र वर्षीय राज्य में प्रभु की आराधना, प्रभु के राज्य का युग। हम अध्याय 7 से भविष्यवाणियों की एक श्रृंखला देख रहे हैं जिनका समापन अध्याय 12 में होगा। इस भविष्यवाणी की श्रृंखला का आरंभ परमेश्वर की प्रजा इसराइल पर परमेश्वर के दंड से आरंभ हुआ था। अध्याय 11 में हमने देखा कि इस पृथ्वी पर एक राज्य की स्थापना होगी और प्रभु यीशु स्वयं उपस्थित होकर राज करेगा। अब अध्याय 12 में हम पराकाष्ठा पर पहुंचते हैं। महाक्लेश का युग समाप्त हो गया है और जीवन की आंधियों का अंत हो गया है। इसराइल प्रभु के राज में है और वह परमेश्वर की स्तुति आराधना में व्यस्त दिखाई दे रहा है। हम इसराइल को विलाप की दीवार की अपेक्षा मंदिर में एकत्र देखते हैं। आज इसराइल विलाप की दीवार के निकट देखा जाता है। इसका अर्थ है कि उनका आज स्वदेश लौटना भविष्यवाणी की पूर्ति नहीं है। मेरे मित्रों, यह छोटा अध्याय एक भजन है और साहित्यिक रत्न है। इसमें प्रभु यीशु के व्यक्तिगत राज्य में मनुष्यों की आराधना का प्रकटीकरण है। परमेश्वर द्वारा दिलाया गया उद्धार और उसकी सृष्टि के निमित्त उद्धार प्राप्त मनुष्यों के मन से परमेश्वर के लिए उभरने वाले यह परिशुद्ध उपासना है। पृथ्वी शाप मुक्त हो गई है और यह परमेश्वर के आराधना का शुभ अवसर है। सृष्टि में उसकी भलाई के प्रदर्शन के प्रति उसकी उपासना का अवसर है। आज हम पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं देखते हैं क्योंकि पृथ्वी शापित है। आज प्रकृति के पैने दांत हैं और पंजे रक्त रंजित हैं, परंतु प्रभु के राज्य में सब कुछ बदल जाएगा। हम देखेंगे उद्धार के निमित्त यहोवा की स्तुति। यशाया के पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, उस दिन तू कहेगा, हे यहोवा, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि यद्यपि तू मुझ पर क्रोधित हुआ था परंतु अब तेरा क्रोध शांत हुआ और तूने मुझे शांति दी है। देखिए, यहां भी लिखा है उस दिन। यह दिन महाक्लेश के आरंभ का समय है और यह समय उस दिन तक रहेगा जिस दिन प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर कदम रखेगा और फिर अपना राज्य स्थापित करेगा। मेरे मित्रों, यह पद पाप की रात के अंत और उद्धार के दिन के उदय का विचार प्रकट करता है। इसराइल महाक्लेश के भयानक अंधकार में रहा होगा और अंततः ज्योति का आगमन होगा। महाक्लेश का अंत हो गया है और वे राज्य की शांति और आनंद में प्रवेश करेंगे। यह परमेश्वर की स्तुति का अवसर होगा, प्रभु के राज्य का लक्षण होगा, परिशुद्ध आनंद होगा। यशाया 12 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और न थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है और वह मेरा उद्धारकर्ता हो गया है। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए कि उस दिन वे यह नहीं कहेंगे कि परमेश्वर ने उद्धार प्रदान किया है, परंतु वे कहेंगे कि परमेश्वर ही उद्धार है। उद्धार एक व्यक्ति है, न कोई कार्यक्रम और न ही एक प्रणाली, न ही उद्धार अनुष्ठान है या पूजा विधि है। उद्धार एक व्यक्ति है और वह है प्रभु परमेश्वर यहोवा, प्रभु यीशु मसीह। वे उसके उद्धार के लिए उसकी स्तुति करते हैं। यशाया 12 उसके 3 पद में हम पढ़ते हैं, तुम आनंद पूर्वक उद्धार के सोतों से जल भरोगे। ध्यान दीजिए, सोतों का अर्थ है बहुतायत। उसका उद्धार मन को संतोष और आनंद प्रदान करता है। प्रभु के राज्य में महान आनंद का समय होगा। प्रभु अपने लोगों के लिए यही चाहता है। वह चाहता है कि हम आज भी आनंदित रहें। हमारे उद्धार के कारण हमें आनंद मनाना है और प्रभु की स्तुति करना है। मेरे विचार में हम जब तक आनंद ना मनाएं, हम उसके गवाह नहीं हो सकते हैं। हम देखते हैं कि यहोवा की सृष्टि के कारण उसकी स्तुति होती है। यशाया 12 उसके 4 पद में लिखा है, उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है। यहां पर हम देखते हैं उस दिन अर्थात प्रभु के राज में, ज्योति के युग में, प्रभु का दिन पाप के अंधकार के बाद उदय हुआ। हमारा दिन सूर्योदय से आरंभ होता है, परंतु पुराने नियम का दिन सूर्यास्त से आरंभ होता है। भजन संहिता 23 उसके 5 पद में लिखा है, कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मेरे मित्रों, सहस्र वर्षीय राज आनंद की प्रभात और परमेश्वर को उद्धार के लिए धन्यवाद देने का समय होगा। केवल सृजनहार होने के लिए धन्यवाद का ही नहीं, उसके सामर्थ्य और वृहत कार्य जाति जाति में प्रचार किए जाएं और उसका नाम प्रतिष्ठित किया जाए। परमेश्वर के कार्य उसके सृजन कार्य ही नहीं, हर एक कार्य होंगे। उस दिन तुम कहोगे, यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, कहो उसका नाम महान है, अर्थात हल्लेलुया। यशाया 12 उसके 5 पद में लिखा है, यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। परमेश्वर के काम महान है। सृजन कार्य के 6 दिन पश्चात परमेश्वर ने अपने कामों को देखकर कहा, अच्छा है। परमेश्वर कहे अच्छा है तो वास्तव में अच्छा है। मेरे विचार में हमारे लिए अच्छा होगा कि हम उसे सिद्ध उद्धार के लिए और सृष्टि के लिए धन्यवाद देते रहें, चाहे पाप ने सृष्टि को मैला कर दिया है। मैं अपने घर के पिछवाड़े में देखता हूं, जहां चूहे बाड़ा खोद रहे हैं और चींटियां घर में धावा बोल रही हैं, परंतु इन क्रोध दिलाने वाली बातों के उपरांत भी वहां चिड़ियों का चहचहाना और पेड़ों में फूलों की सुंदरता है। यद्यपि पृथ्वी पाप के श्राप से ग्रस्त है, वह अब भी सुंदर है। तो सोचें कि श्राप से मुक्त हो जाने के बाद उसकी रमणीयता कैसी होगी। हमारे पास उस दिन परमेश्वर की स्तुति का अवसर होगा, जैसा आज है। यशाया उसके 12 अध्याय और 6 पद में लिखा है, हे सियोन में बसने वाली, तू जय जयकार कर और ऊंचे स्वर से गा, क्योंकि इसराइल का पवित्र तुझ में महान है। मेरे मित्रों, यह मुक्ति प्राप्त आत्मा की धड़कन और उत्तेजना है जो एक अकिंचन मानव परमेश्वर को अपने यथाशक्ति अर्पित करता है। उसका हल्लेलुया गान, जी हाँ, हम परमेश्वर के प्रति अपने समर्पण की बात करते हैं, परंतु हम जानते नहीं कि समर्पण क्या है। उस महिमामय दिन इसराइल समर्पण का अर्थ जान लेगा और निश्चय ही हम भी जान लेंगे। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 12 समाप्त होता है और अब हम आगे बढ़ते हैं और अध्याय 13 से अध्ययन को जारी रखते हैं, जिसका विषय है प्रभु के दिन विनाश और निकट भविष्य में होने वाला विनाश। अध्याय 13 पूर्ण रूप से एक नया संदेश लाता है जो अध्याय 23 तक चलेगा। यह भाग पड़ोसी 9 राष्ट्रों को परमेश्वर के दंड के विषय में है। धर्मशास्त्र का यह एक अति अद्भुत भाग है क्योंकि इसकी अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। ये ऐतिहासिक तथ्य है, इनमें से प्रत्येक देश इसराइल की सीमा से लगा हुआ था या अधिक दूर नहीं था और इसराइल के साथ उनका व्यवहार था। इसराइल के लिए उनमें से कुछ देश कष्ट का कारण थे और आज भी हैं, भविष्य में भी इसराइल को कष्ट देंगे। इस अंश में कुछ नाम आएंगे जिनसे हम परिचित हैं। इनमें से एक देश मिस्र है। कुछ भविष्यवाणियों की पूर्ति अभी भावी घटना है, परंतु अधिकांश भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। वे आज भविष्यवाणी की पूर्ति का प्रमाण है। मेरे प्रियो, यह सब इन 11 अध्यायों की एकमात्र रुचि और उनका एकमात्र महत्व है। इस अध्याय में, इस अंश में अत्याचारी अशुर राज्य नहीं है, उसके स्थान पर एक अन्य जाति राज्य बेबीलोन प्रकट हो रहा है। ऐसा संदेश सुनाना भविष्यद्वक्ता के लिए आसान काम नहीं था। यह मनुष्यों पर प्रभाव डालने और मित्र बनाने की विधि नहीं है, परंतु परमेश्वर के सेवक जनमान्यता की स्पर्धा में नहीं थे। पहला दंड बेबीलोन के लिए है। धर्मशास्त्र के श्रद्धालु विद्यार्थी के लिए इसमें अनेक सुझाव हैं। सबसे पहले तो हमें बेबीलोन नगर पर ध्यान देना होगा क्योंकि यशाया के युग में बेबीलोन का नाम नहीं था। यशाया के बाद लगभग 100 वर्ष बीत जाने पर बेबीलोन विश्व शक्ति के रूप में उभरा था। परमेश्वर बेबीलोन के उदय होने से पूर्व उनके दंड की घोषणा करता है। भविष्यवाणी 9 राष्ट्रों पर दंड की ही नहीं, अध्याय 28 से 33 में हम देखेंगे कि इन राष्ट्रों पर परमेश्वर की हाय भी है। और आंधी तूफान के बाद अध्याय 34 और 35 में शांति का वातावरण उत्पन्न होता है। ये अंतिम दो अध्याय सहस्त्र वर्षीय राज्य का दृश्य प्रस्तुत करते हैं। अध्याय 13 में प्रभु के दिन में बेबीलोन के दंड का उल्लेख है। मेरे विचार में यह अपनी पूर्ति के निमित्त महाक्लेश की ओर संकेत करता है। तो देखें प्रभु के दिन बेबीलोन का दंड। यशाया 13 अध्याय के 1 पद में लिखा है, बेबीलोन के विषय भारी भविष्यवाणी जिसको आमोस के पुत्र यशाया ने दर्शन में पाया। अध्याय 13 और 14 ऐतिहासिक बेबीलोन विचाराधीन है। बेबीलोन प्राचीन संसार का एक महान राष्ट्र हुआ है और सच तो यह है कि वह पहले विश्व शक्ति था और दानियल की पुस्तक में उसका विवरण है। नबूकदनेस्सर सोने का सिर था, वह प्रथम विश्व शक्ति का राजा था। बेबीलोन का भविष्य में पुनः निर्माण होगा। बेबीलोन परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह के गठबंधन का प्रतीक है। उसका आरंभ बाबुल के गुम्मट से हुआ था और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 17 और 18 में समाप्त होगा। हम वहां धार्मिक बेबीलोन और राजनीतिक बेबीलोन को देखेंगे कि वह विश्व पर राज कर रहा है। महाक्लेश के समय बेबीलोन का पतन होगा जो परमेश्वर का दंड होगा। यहाँ धर्मशास्त्र में उसका संभवतः पहला उल्लेख है। तो आइए पढ़ें यशाया 13 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैंने स्वयं अपने पवित्र किए हुओं को आज्ञा दी है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है जो मेरे प्रताप के कारण प्रसन्न हैं। ध्यान दीजिए, पवित्र किए हुए अर्थात पृथक किए हुए, अलग किए हुए, किसी विशेष काम के लिए अलग किए हुए। परमेश्वर यहाँ कहता है, मैंने अपने क्रोध के लिए अपने वीरों को बुलाया है। परमेश्वर ने बेबीलोन को एक विशेष उद्देश्य के निमित्त अलग किया है। उसने अशुरों को भी अपने उद्देश्य के निमित्त अलग किया था। यशाया 10 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर ने कहा था, अशुर पर हाय जो मेरे क्रोध का लठ और मेरे हाथ में का सोंटा है। परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दंड देने के लिए अशुरों को चुना था, परंतु फिर उसे दंड भी दिया। वह बेबीलोन के साथ भी ऐसा ही करेगा। परमेश्वर के लिए जो भी वस्तु अलग कर दी जाती है वह शुद्ध होती है। अशुर और बेबीलोन इसराइल को दंड देने के लिए अलग किए गए थे। वे एक विशेष उद्देश्य के निमित्त परमेश्वर के द्वारा अपने साधन बनाए गए थे। यशाया 13 उसके 4 पद में हम पढ़ते हैं, पहाड़ों पर एक बड़ी भीड़ का सा कोलाहल हो रहा है, मानो एक बड़ी फौज की हलचल हो। राज्य राज्य की इकट्ठी की हुई जातियां हलचल मचा रही हैं। सेनाओं का यहोवा युद्ध के लिए अपनी सेना इकट्ठी कर रहा है। यह पद पवित्र किए हुए का अर्थ स्पष्ट करेगा। बेबीलोन दक्षिणी राज्य यहूदा के विरुद्ध वैसे ही उठेगा जैसे अशुर उत्तरी राज्य इसराइल के विरुद्ध खड़े हुए थे। वह उन्हें बंदी बनाकर ले जाएगा। यशाया 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, वे दूर देश से आकाश की छोर से आए हैं, हाँ यहोवा अपने क्रोध के हथियारों समेत सारे देश का नाश करने के लिए आया है। बेबीलोन परमेश्वर के क्रोध का लठ होगा। यशाया 13 उसके 6 पद में हम पढ़ेंगे, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानो सत्यानाश करने के लिए आता है। यह भविष्यवाणी वर्तमान इतिहास के परे की है और महाक्लेश के समय की ओर संकेत करती है। तब हम पढ़ते हैं यशाया 13 उसके 7 पद से 9 पद में लिखा है, इस कारण सबके हाथ ढीले पड़ेंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा और वे घबरा जाएंगे, उनको पीड़ा और शोक होगा, उनको जच्चा की सी पीड़ाएं उठेंगी, वे चकित होकर एक दूसरे को ताकेंगे, उनके मुंह जल जाएंगे। देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। महाक्लेश में परमेश्वर फिर से बेबीलोन को अपना साधन बनाएगा जैसा उसने पहले भी किया था। महाक्लेश को पीड़ा का समय कहा गया है। मनुष्य अत्यधिक पीड़ा में होगा। प्रभु का दिन इस पीड़ा के समय से आरंभ होता है। इसे यहाँ महाक्लेश कहा गया है। मेरे मित्रों, महाक्लेश और अंत के समय के बारे में हम चर्चा सुन रहे हैं और कर रहे हैं। यह वह समय आता है जब परमेश्वर फिर से इस पृथ्वी पर राज्य करेगा और अपने लोग को फिर से अपने पास ले लेगा। लेकिन इससे पहले महाक्लेश, कष्ट और सताव का सामना हमें देखना होगा। इसलिए आइए हम अपने मन और दिल को अभी से तैयार करें ताकि हम परमेश्वर के प्रेम में, उसके निकटता में बने रहें और हम उन आशीषों को ग्रहण करें। मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने न रोको उन्हें न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास। न रोको उन्हें न टोको उन्हें, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने दो मेरे पास, उनको आने निर्बल का बन जाओ बल, अंधों की तुम रोशनी बनो, अपाहिजों को दो तुम जगा, बीमारों की तुम सेवा करो, दुखियारों को दो हौसला, बेजुबानों की बन जाओ।